نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارا نمبر 18 آيات تے أمة پہلی آيات سورة مومنون کی آيات 43 ہے ما تسبق من أمت أجلها وما يستأخرون کوئی جماعت اپنے وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے اس سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اندھیرا ایک دم روشنی میں نہیں ڈھلتا اسی طرح روشنی ایک دم اندھیرے میں نہیں جاتی تو ہمیں وقت کا استعمال کرنا ہے کوشش کرنی ہے اور پھر انتظار کرنا ہے کہ کب مسلمانوں کے حالات بدلتے ہیں اللہ کے حکم سے پھر اس کے بعد اگلی آیت سورت مومنون کی ہے آیت کا نمبر ہے 44 ثم ارسلنا رسولنا تترو كلما جاء امت رسولها كذبوه فاتبعنا بعدهم بعدا پھر ہم نے اس کے بعد رسولوں کو پے در پہ بھیجا جب کسی امت کے پاس اس کا پیغمبر آتا تھا تو وہ اس کو جھٹلاتے تھے تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے اور ان پر عذاب لاتے تھے اور ان کے افسانے بناتے رہے بس جو لوگ ایمان نہیں لائے ان پر لعنت ہے یہاں کیا پتہ چلا کہ جب بھی کوئی رسول اپنی امت کے پاس بھیجا جاتا ہے اور لوگ جب ان کو جھٹلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو کہانیاں بنا دیتا ہے یعنی نیست و نابود کر دیتے ہیں زمین پہ رہتے ہوئے بھی بس لوگ ان کی پھر باتیں یاد رکھتے ہیں تو کیا پتہ چلا کہ آج رسول تو نہیں آئیں گے لیکن رسولوں کے احکامات اور ان کی تعلیمات جب بھی ہمارے پاس آئیں تو ہر ممکن طریقے پہ ہم نے ان کو ماننے کی کوشش کرنی ہے جھٹلانا تو بڑی سرکشی کی بات ہے خود کو بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ میں نہ مانوں کسی عام انسان کی بھی بات سن کر آپ کے میں نہ مانوں تو اس کے دل میں کیسا آئے گا اور کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کے بارے میں ایسا سوچیں پھر اگلی آیت سورہ مومنون کی آیت 50 ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَتًا اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو اپنی نشانی بنایا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی جہاں نتھرا ہوا جاری پانی تھا وہاں بنا دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب بی بی مریم پریگننٹ تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو بیت اللحم کی طرف لے گئے اور وہاں ایک بہت اونچی جگہ پر انہوں نے بچے کو پیدا کیا یہاں جو لفظ ہے پھر امہ کا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس بڑی آزمائش میں ڈالا اس کے بعد خیر بھی اتنی بڑی آئی تو کبھی بھی زندگی میں آپ پر اللہ کے نام پر کوئی آزمائش آئے تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی خیر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اگلی آیت ہے سورت مومنون 52 وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ اور یہ تمہاری جماعتیں حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں بس مجھ ہی سے ڈرو یعنی سب کو یونائٹ کرنے والی چیز توحید ہے اور جب اللہ سے ڈریں گے تو پھر ساری چیزیں ہمارے دل سے نکلیں گی اور اس کے بعد آخری آیت اس بارے کی سورت نور کی آیت نمبر 61 ہے جس میں ایک لمبی لسٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کی ہے کہ تم کن کے گھروں سے کھا سکتے ہو لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ وَبُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ کیا پتہ چلا کہ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے نہ لنگڑے پر نہ بیمار پر نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا بھائیوں کے گھروں سے اور نہ اپنی بہنوں کے گھروں سے نہ چچاؤں کے نہ اپنی پھوپھیوں کے اور اپنے ماموں کے اور اپنی خالاؤں کے یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھاؤ یا جدا جدا اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو یا اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس کے اندر ہمیں کھانے کی بات کی اور روزے کی حالت میں تو کھانے کی بات سن کے خوشی بڑی ہوتی ہے تو اس سے ہم دیکھیں گے جہاں پہنچیں گے کہ اسلام ہمیں کس طرح مل جل کے رہنا سکھاتا ہے اور رشتوں کی محبت دلاتا ہے کہ اگر تم اپنی خالہ پھپھو ماموں کسی کے گھر ہو اور تم وہاں جا کر کچھ کھانا چاہو تو تم کھا سکتے ہو ایون ان کی اجازت کے بغیر بھی پتہ چلا ٹیبل پہ نٹس رکھے ہوئے تھے اور آپ لینے لگے پھپھو میں کھا لوں پھر تھوڑی دیر بعد گزرا اچھا میں گلاس لے کے فریج سے پانی پی لوں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کسی کے گھر ٹھہرے ہیں وہ سو رہا ہے تو اس کو اٹھانے کی ضرورت نہیں بلکہ آپ کھا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے ایسی ہی محبت کرنے والا بنا دے آپ چلتے ہیں آج کے ٹارگیٹ پہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پارا 18 پارا نمبر 18 سورت مومنون کے شروع سے شروع ہوگا. تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اپنے موضوع کے اعتبار سے. ہم سب نے دورہ قرآن کا تھیم یہ سوچا کہ ہم ایک امت بننا چاہتے ہیں جو دنیا میں تبدیلی لائے. رائٹ اور رانگ؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو شروع میں شاید اس کانسیپٹ کو اتنا نہیں سمجھے لیکن اب الحمدللہ وہ اس سے متفق ہیں. آج اس سورت کے شروع میں ہم وہ چیک لسٹ پڑھیں گے کہ امت مسلمہ اگر اس دنیا میں امت وسط بن کر جینا چاہتی ہے تو ابتدا کہاں سے کریں. کیونکہ ہم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو ادھر ادھر گھما پھرا کے دیکھیں کہاں سے شروع کروں, کیا کروں, اس کو تبلیغ کروں, اس کو کہوں, کچھ نہیں. آپ اس ترتیب چل پہ چلتے جائے جو اس میں اور ان آیتوں کی روشنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی تھے. کان خلقہ القرآن, جب کسی نے ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, تو آئیے ہم ان سب کو اکٹھا پڑھتے ہیں, پھر میں ان سب کو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ریکیپ کروں گی اور ہم سب دیکھیں گے کہ اگر آج یہ ترتیب ہماری تربیت میں شامل ہو جائیں تو ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ محنت کرنا مشکل سے زیادہ آسان ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. سورت مومنون ترتیب کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ یہاں نوٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. ہم نے ہدایت کے اعتبار سے چار مختلف گروہوں کا نام پڑھا تھا سورت بقرہ کے شروع میں. تذکرہ تھا متقیوں کا تھا اور اسی طرح اس میں کافروں کا تھا اور منافقوں کا تھا. قرآن پاک میں مومنون نام کی بھی صورت ہے, منافقون کی بھی صورت ہے, کافرون کی بھی صورت ہے. آج اس ترتیب میں سے پہلی صورت ہے, یعنی ایمان پہلی چیز ہے, مطلوب یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ہمارے سامنے رکھ کر ہم سب کو ایک بار پھر سوچنے کا موقع دیا کہ کیا واقعی میں مومن ہوں اور کیا میرے اندر یہ صفات ہیں. کیا فرمایا؟ قد افلح المومنون. پچھلے پارے کے اگر اینڈ پہ دیکھیے تو وہاں کیا بات تھا, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک ایجنڈا دے دیا تھا کہ اگر تم ایک ملت بن کے جینا چاہتے ہو تو تمہیں وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا. اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ. اب یہاں اسی کے آفٹر ایفیکٹس ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کو محکم پکڑ لیتا ہے اور وہ اس دنیا میں اللہ کا بندہ بن کے جیتا ہے تو اس کے لیے کیا نوید ہے؟ فلاح, کامیابی. قد افلح, تحقیق, بے شک فلاح پائی من لانے والوں نے, جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں, لغویات سے دور رہتے ہیں, زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں, البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں, اور اپنی امانتوں رہتوں کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اولائکہم الوارثون, یہی وہ لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں 11 آیات ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 10 صفات کا تذکرہ کیا. پہلی چیز دیکھیں گے لفظ فلاح کو. دیکھیں فلاح کیا ہے؟ پوری کامیابی, دین اور دنیا کی کامیابی. ادھوری کامیابی کو فلاح نہیں کہتے. بہت سارے اور لفظ ہیں, فوز ہے, فوزیہ لفظ ہمارے ہاں بہت عام ہے. تو کامیاب کون ہے؟ جس کو دین بھی ملا, دنیا بھی ملی, جس کی یہ دنیا بھی بنی اور جس کی آخرت بھی بنے گی. یہ کبھی ہوا نہیں نہ ہوگا کہ مسلمان دنیا میں ذلیل ہو, خوار ہو, ناکام ہو, سست ہو, بدو ہو اور آخرت میں ان کو جنت مل جائے. یہ کبھی نہیں ہوا. آج اس کانسیپٹ کو کھرج کے رکھ دیجئے. چلے آج ہم بڑے مظلوم ہیں, مجبور ہیں, بیٹھے چائے پیتے رہتے ہیں, حکا پیتے ہیں, تبصرے کرتے ہیں, دیکھنا جن مرتے سیدھے جنت میں جائیں گے. کاٹ کے پھینک دیجئے اس کانسیپٹ کو. مسلمان پہلے دنیا میں کامیاب ہوتا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے لیے جنت لکھ دی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ آخرت کی جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس دنیا کی جنت سے گزرنا پڑتا ہے. کئی اس کے اینگل ہے, دنیا کا سکون چاہیے, دنیا کا اطمینان چاہیے. تو لہٰذا مکمل کامیابیوں کی خواب اپنے بچوں کو دکھائیں. جب ہم کہتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے, کیا کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو وہ کامیابی کا ادھورا اصول ہے. کیونکہ آج اگر عین جوانی میں بچے کی جان چلی گئی تو اس کی کامیابی تو ختم ہو گئی. اور عربی زبان میں کسان کو, فارمر کو بھی فلاح کہتے ہیں. کاٹنا, پھاڑنا, محنت کرنا. مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہمارا دین محنت کرنا سکھاتا ہے. دوڑو, بھاگو, ایک جوش ہے, دس دیٹ دس. کل ہمیں اتفاق ہوا ایک جگہ پانی کو دیکھنے کا, اور وہاں اتنے زور سے پانی پتھروں سے ٹکرا رہا تھا اور آواز پیدا ہو رہی تھی اور جوش پیدا تھا. اوپر سے بالکل سیدھا پانی وہی تھا, سمپل چل رہا ہے, اس میں کچھ بھی نہیں جوش. لیکن جو ہی وہ پہاڑوں میں پتھروں میں گرا, شور بھی ہے, جھاگ بھی, تو اس وقت میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو اسٹریٹ پانی ہے نا, یہ آج امت ہے. اندر خیر بہت ہے ان کے, لیکن اب ان کو پتھروں سے ٹکرانا نہیں آیا. اور جو نیچے جھاگ ہے, یہ اب یوتھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تھک چکے ہیں پتھر سنتے ہوئے. تو وہ ایمان ہی کیا جس میں جوش نہ ہو, کیونکہ پہلی شرط کیا ہے؟ مومنون. ایمان انسان کے اندر ایک تبدیلی لاتا ہے. حقیقت آپ لکھ لیجئے, ایمان وہ چیز ہے جو آپ سے بھگواتا ہے. ابھی آپ گاڑی میں جب بیٹھ کر آئے ہوں گے, گیس یا پیٹرول جو آپ نے جلائی وہ آپ کا ایمان ہے. گاڑی میں پیٹرول نہ ہو تو گاڑی نہیں چلتی. آپ کے اندر ایمان نہ ہو تو عمل صالح نہیں ہوتا. اور ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے, ایمان بہت قیمتی چیز ہے. ایمان انسان کے دل کی کیفیت کو بدل دیتا ہے, اس کی دلچسپیوں کو بدل دیتا ہے. اس کا اس دنیا میں جینے کا رنگ ہی مختلف ہو جاتا ہے. اس کو اپنی آخرت اس دنیا میں نظر آتی ہے. اس کو بالکل جو پرائیورٹیز تھی وہ لیز پرائیورٹیز بننے لگتی ہیں, اور جو لیز تھی وہ اوپر آنے لگتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ مفلح کا انجام جو ہے نا وہ اصل میں محنت کے بعد ہے. ہم عموماً زبانی کلامی بات کر کے کہتے ہیں کہ بس ہم مسلمان ہو گئے, 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے رکھ لیا, مکہ میں جائیں گے تو یہ لبیک اللہم لبیک پڑھ لیں گے. لیکن ایمان عمل کے تقاضے کرتا ہے. آپ کے بولے ہوئے الفاظ پھر آپ سے کچھ تبدیلیاں چاہتے ہیں, اور جس کے اندر یہ تبدیلی آنے لگتی ہے اس کو پھر اپنی منزل جنت دکھنے لگتی ہے. اور حقیقی ایمان کے بعد سنجیدگی آتی ہے. انسان اتنا سنجیدہ ہو جاتا ہے لغویات میں نہیں آتا. آپ سوچئے نا ان ساری چیزوں کو, کہ ایمان آیا تو آپ کا دل چاہا کہ اللہ سے پیار کرے, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے, تو آپ نے نماز شروع کر دی. اور نماز کیسی پڑھی؟ خاشعون, خشوع کے ساتھ. یہ نہیں کہ کوئی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے, تو کوئی پردے کے رنگوں سے کھیل رہا ہے, اور کوئی جائے نماز کے ڈبے گن رہا ہے, نہیں. پھر انسان حقیقت میں نمازوں کے وقت اپنے آپ کو ایک مجرم کی صورت میں ایک کٹہرے میں کھڑا ہوا سوچتا ہے, پھر خود بخود خشوع آئے گا. بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں, نماز میں خیال آتے ہیں, خشوع نہیں ہے. تو اس میں انہی آیتوں پہ ایک لیکچر ہے جنت کے بارے سے. تو اس میں خشوع پہ ہم نے ڈفرینٹ باتیں کی ہیں. ہر ہر چیز کا تعلق خشوع سے, وقت پہ پڑھیں کہ نہیں پڑھے, پہلے کیا کر رہے تھے, پہننا کیا ہے, جگہ کون سی ہے, آپ کا دوپٹہ تو نہیں پھسلنے والا, آپ کی جائے نماز تو چبھنے والی نہیں. تو یہ سب چیزوں سے بڑھ کر میں کس کے سامنے کھڑی ہوں؟ اب جو ہی آپ نے نماز پڑھی خشوع والی, تو اس کے بعد مومن سنجیدہ ہوتا ہے. تو پھر لغویات کی زندگی میں جگہ ہی نہیں رہتی. کون 3 گھنٹے ضائع کرے؟ آہستہ آہستہ پھر نماز, ان صلاۃ تنخانی الفحش والمنکر, 21ویں پارے میں ہم پڑھیں گے کہ نماز تو بے حیائی اور منکر سے روکتی. پھر دل چڑھنے لگتا ہے. پھر انسان کو یہ خرافات کبھی ونس ا وائل کسی کے کہنے پہ کسی موقع پہ ہو گئی تو ہو گئی, اس پہ بھی گلٹی ہوگا. لیکن اس کے برعکس جب آپ کسی کو ایمان کے ساتھ دیکھے تو اس کے پلاننگ میں نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے اتنے گھنٹے میں بیٹھ کے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کنسرٹس دیکھنا ہے, ابھی عید کے فنکشنز بھی اٹینڈ کرنے ہیں, اور اس میں یہ کچھ ہے. پھر انسان بیکار بیٹھ ہی نہیں سکتا. اور جو ہی انسان کی زندگی سے لغو نکلتا ہے نا, تو اس کے پاس مال بہت بچتا ہے, کیونکہ بہت سارا مال جو ہے نا وہ بیکار مشغلوں پہ جاتا ہے. کئی ساتھی کہتے ہیں جب ہم نے گانے چھوڑے تو ہمیں احساس ہوا کہ ہمارے پاس کتنے سی ڈیز ہیں کہ جس میں سانگز ہیں, اور کتنا پیسہ ہمارا لگ جاتا تھا صرف انہی چیزوں پہ. اب جب پیسہ چھوٹا تو پھر مال اس زکاتی فائلون, پھر انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس میں تزکیہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. جیسے بارش ہوتی ہے تو خود رو پودے اگ جاتے ہیں نا, اسی طرح سانگ سننے والے کے دل میں خود بخود الٹے پلٹے جذبات آتے ہیں. اب جب وہ نکلے تو تزکیہ ہو گیا, سوچ پاک, ظاہر پاک. جب اندر پاک ہوتے ہیں نا تو پھر باہر بھی پاک ہونے لگتا ہے. اسی تزکیہ میں وہ سب کچھ آ جاتا ہے. پھر لباس پاک ہوتا ہے, نظریں پاک ہوتی ہیں. وہ کسی ایسے حال ولیے میں نہ باہر جا سکتا ہے نہ گھر میں رہ سکتا ہے جو دوسروں کو اشتہا دلائے, کہ جس کو دیکھ کر انسان کو احساس ہو کہ واقعی وہ دوسروں کو بھی دعوت دے رہا ہے. اب جب یہ سب ہونے لگتا ہے تو پھر خود بخود شرمگاہ پاک ہو گئی, نظر پاک ہوئی, آنکھیں پاک ہوئی, تو اس کے بعد صرف اور صرف نظریں پڑتی ہیں تو بیوی پہ پڑتی ہیں. حقیقت آج کے دور میں تو بیوی ہے. ایک سچا مومن جو خوشی اور لذت اپنی بیوی سے پا سکتا ہے, وہ کسی اور کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے دل دماغ خیالوں میں کبھی کوئی دوسری عورت نہیں آتی تو زنا کا دروازہ بند ہو گیا. جب زنا بند ہو گیا تو پھر امانتے اور عہد کی رعایت ہے. آپ دیکھیں ایک سے ایک چیز جڑی ہوئی ہے. ایک مومن حقیقت میں ایک چلتا پھرتا درخت ہوتا ہے ایمان کا, اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو جنت میں پائے. پھر نماز پہ بات آ جاتی, یعنی مومن فرض نمازیں, سنت نمازیں, نفل نمازوں میں آتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میں مومن ہوں کہ نہیں, ایمان ہے کہ نہیں, کیسے پہچانے, کیسے پتا چلے؟ تو اپنی نماز کو دیکھ لیں. جو میری نماز کی حالت ہے وہ میرے اصل کی حالت ہے. نماز ہمارے تعلق باللہ کی چگلی کھاتی ہے. پھر دوسرا اس کا کرائیٹیرین آپ کے میرے مشاغل, ہم اپنی چیزوں کو دیکھیں, ہمیں کیا اچھا لگتا ہے, ہماری ہابیز کیا ہیں, ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. اسی سے انشاءاللہ آپ کو خود بخود پتا چلے گا. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو گندی چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس کا طبیعت پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ ایک رپورٹ تھی میرے پاس جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو گلوسی میگزین ہوتے ہیں, فیشن میگزین, اور جس میں بہت خوبصورت سی عورتیں ہوتی ہیں, 70% औरतें जो हैं इसको देखने के बाद डिप्रेशन में चली जाती हैं। क्यों? वो कहते हैं कि ये अपना तकाबुल उन खूबसूरत लड़कियों से करती हैं जो कि वहां मैगजीन्स में तस्वीरों में दिखती हैं। अब जब ये खुद को अपने आप पर नहीं पाती तो ये डिप्रेशन में चली जाती है। और इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि सिर्फ 3 मिनट देखे कोई, यानी आपके सामने ग्लॉसी मैगजीन और आप देखिए, जुल्म की हद है कि स्टोर्स में जहां आपको चेकआउट पे खड़ा होना ही पड़ता है काउंटर्स में, उधर गंदे रिसाले रखते हैं। और ये खुद किसी सिस्टर जिनके मियाँ खुद इसी तरह के यानी मार्केटिंग में थे, तो उन्होंने बताया कि हमेशा लोगों को ऐसी चीजें यहाँ जरूर दिखाई जाती क्योंकि यहाँ लोग फारिग होते हैं, नजरें पड़ती हैं, ये जिना को फैलाने की चीजें। अगली सूरत तो सारी जिना के टॉपिक पे। तो क्या पता चला कि जब 3 मिनट तक कोई एक औरत देखती है तो उसके बाद 70% औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो लिहाजा हमें अपनी आंखों को भी बचाना है, सब चीजें निकाल के फेंक दे जिससे आपकी दिल दिमाग पीछे चला जाए। आप कह लीजिए कि तज़किया ऐसी है कि एक अकलमंद किसान जो है वो अगले फूल खिला रहा है और लेकिन पिछलों को भी जाया नहीं करता। आपकी खेती कैसे लगेगी? एक फूल लगाएं तो एक तोड़ लें, एक फूल लगाएं तो एक तोड़ लें। नहीं, नेकियों का बाग कब बनता है कि पिछली नेकियां अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़ी है, बागे चलते हैं, चलिए अब और बाग लगाते हैं, अब और फसलें लगाते हैं, अब और खेतियां तैयार करते हैं। इस तरह फिर साथी मिलते जाते हैं और माशरों की तखीर होने लगती है। अगर एक ही जगह को एक ही इंसान पे आप मेहनत करते रहे तो एक वक्त आएगा कि बाग कभी नहीं होगा। तो तस्किया के अमल में फिर मुसलसल नेकियां भी आती हैं, कंटिन्यू। ये नहीं कि रमजान की नेकियां, आजकल आप खुद को फील करें, आपको कोई चीज भी छोड़नी मुश्किल नहीं लगेगी, आपको नमाज भी अच्छी लगती है। आप देखिए कि फजर तहज्जुद नमाजें माशाल्लाह मस्जिदें भरी हुई हैं, लेकिन ईद के बाद ये कुरान छूटता है ना, इसका छूटना आपके अंदर से वो रेजिस्टेंस खत्म कर देता है। ईद अल्लाह ने शायद एक आजमाइश बना के रख दी, और जिन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा इस रमजान में, वो ईद की पार्टियों में आपको बहुत कुछ ऐसी चीजों की दावत हो सकता है आदतन दे दें जैसे पहले देते थे। अब आप अगर उस तरफ पलट गए और आपने अपने आप को कहीं ना बांधा तो बिल्कुल वही बात है कि घर कितने को दिन साफ रहता है। आपकी मासी कल बेहतरीन घर साफ करके आपसे $100 लेके चली भी गई तो आपका घर कब तक साफ रहेगा? जब आप उसको साफ रखेंगे और रोज साफ थोड़ा थोड़ा करेंगे तो रहेगा, वरना उसको फिर आप बेशक अगले हफ्ते बुला लीजिए। तो ये तस्किया का अमल मुसलसल अमर है। चाहिए क्या? जन्नत, क्योंकि जन्नत बड़ी खूबसूरत जगह है। आला तरीन सिफात का मालिक आला तरीन जन्नतों में जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब सवाल करो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस मांगो क्योंकि उसकी छत रहमान का अर्श है, यानी द हाईएस्ट लेवल ऑफ जन्नत जो किसी आम उम्मती को मिल सकता है वो जन्नतुल फिरदौस है। हाँ, उससे भी ऊपर वसीला है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा। तो क्या मैं नहीं चाहते, आप नहीं चाहते? हमें सिर्फ दुनिया में खबर मिल जाए ना, एक बहुत खूबसूरत जगह बनी है, वहां ये है वो है, तो हम बिल्कुल अपने आप को इस चीज के अंदर महसूस कर सकते हैं। हम चाहते हैं हम एक नजर तो देखें, चले एक रात के लिए तो चलते हैं, चले देखें सही वहां क्या है। तो क्या हम नहीं चाहते कि हम कभी जन्नतुल फिरदौस देख ही ना सकें? और जिसने एक बार देखी उसको मिल जाएगी जन्नत में। ये नहीं कि चल हम नहीं इस काबिल थे, बस एक टूर करा दे, चले आज हमें वहां दूर से दिखा दे। जिसने एक बार देख ली फिर वहां मौजूद होगा। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ करते हैं आज कोशिशों को तेज करवा ले। हो सकते हैं हम जन्नत में जाएं, इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन हम फर्स्ट सेकंड ग्रेड में बैठे हो सकते हैं हम थर्ड सेवंथ में हो। 100 दर्जे हैं तो जन्नतुल फिरदौस 100 दर्जे हैं। तो क्या हम नहीं चाहते? हम क्यों बीच में रहें? क्यों हम बीच में मीडियोकर बन करें? इट्स ओके, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्यों आप ये कहते हैं? आप ये कहते नहीं, मुझे एवरीथिंग वॉन्ट, आई वॉन्ट एवरीथिंग, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह होगा। अब यहाँ बास लोग कहते हैं कि अच्छा जी देखो सिर्फ ये 10 चीजें हैं, बस ये कर लो तो जन्नत है, और ना तो इसमें शिर्क की बात है, ना हज की बात है, ना जिहाद की बात है। तो यहाँ असल में बीज बताया गया, सही अमल बता दिया गया। ईमान के बाद जो पौधा लगता है वो ऐसे ही होता है, उसके बाद बाकी चीजें खुद ब खुद आती हैं। सिर्फ एक आयत पर क्यास करके पूरी शरीयत को अगर पीछे कर देंगे तो भटक जाएंगे। इसलिए अब इसके बाद अब देखिए कि आगे से अब इंसान को उसकी तखलीक दिखाई गई कि अल्लाह के हुक्मों पे बैसे ना करो, चूचा ना करो। अल्लाह सुबहाना तला तुम्हें बेहतरीन तरीके से ये खूबसूरत सारे मामले सिखाकर जिम्मेदारियों को अदा करना सिखाता है। और एक छोटी सी बात कह दूं कि वल्लज़ीनहुमानाती वहदिमराउन, उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा वादा जो अल्लाह से वो क्या है, कुन तुम खैर उम्मत नुखरीदत लिन्नास। आज अगर हम अल्लाह का दीन नहीं फैला रहे लोगों को, नहीं बता रहे उसको अपने तरीके से प्यार से, तो हम कल क़यामत के दिन अल्लाह के हाँ जवाबदेह होंगे। पिछली ही सूरत ने आपको बता दिया, आखिरी आयत याद कर लीजिए सूरत हज की, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया। और इन सब को लेकर चलेंगे, कमिटमेंट्स को निभाएंगे और अपने अपने कामों को लेंगे, अल्लाह ताला हमारे जरिए से इंशाल्लाह खैर करे। इसीलिए उसके बाद फरमाया अब आगे, वलकत खलकनल इंसान मिन सुलालत मिन तीन, हमने इंसान को मट्टी के सत से पैदा किया, फिर इसको एक महफूज जगह पर टपकी हुई बूंद में तब्दील किया, फिर इस बूंद को लोथड़े की शक्ल दी, फिर लोथड़े को बोटी दी, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसे एक दूसरी की मखलूक बनाकर खड़ा कर दिया। बस बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, सब कारीगरों से अच्छा कारीगर। फिर इसके बाद तुमको जरूर मरना है, फिर क्यामत के रोज यकीनन तुम उठाए जाओगे। कोई भी अपनी तस्वीर बनाई हुई कोई ऐसी चीज जिससे उसको बहुत मोहब्बत हो, उसको जाया नहीं करना चाहता, ऐसी है ना। आप कोई भी कढ़ाई कर ले, आपने कभी अगर जवानी में कोई कढ़ाई की होगी तो आप आज भी उसको संभाले रखी होगी कि ये मेरी अपने हाथ की चीज है। अल्लाह सुबहान तला ने इंसान को पैदा किया, कितने प्यार से बनाया, कितने नुकसुक से बनाया, तो क्या अल्लाह तला इंसान को जाया कर देगा? नहीं करेगा। याद रखिए कि एक दफा जब एक इंसान की रूह पड़ गई, यानी दुनिया में आ गया रूह की सूरत में, उससे लेके आज तक, और आज से लेके मरने, मरने के बाद जन्नत या जहन्नम, इंसान इज इमॉर्टल। जैसे अल्लाह की जात है ना कि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, यही चीज हमारी रूहों के साथ है। गौर से सुनिएगा, बात गलत ना कर दें। जिस तरह अल्लाह को मौत नहीं आनी ना, अल्लाह सुब्हान तआला हमेशा से था, है और रहेगा, इसी तरह इंसान जब से पैदा किया गया, जब अल्लाह ने हमारी रूहें आदम के बतन से निकाल के और उनको फैलाया, तब से लेके अनफिनिट टाइम तक इंसान की रूह कभी नहीं मरेगी। ये सिर्फ रूप चेंज करती है। पहले रूहों की शक्लों में थे, जुनूद मुजन्नदा के अल्फाज आते हैं, यानी फ्रीज की हुई थी अल्लाह ने रूह, वहां से ये सब असेंबल होके आ रही है। माँ के पेट में असेंबलिंग होती है, दुनिया में आए 40-50-60 साल रहे, यहां से फिर वापस उठाया, जिसम को इधर डाल दिया, अब ये पुराना हो गया, कपड़ा फेंको, रूह ऊपर चली जाती है। रूह कुछ नहीं होता, मौत की सूरत में रूह सिर्फ ऊपर जाती है, उसको कुछ नहीं होगा, वहां उसको एक नया जिसम मिल जाएगा। बरजख में है तो वो रूह से जीन और इलीजीन के कड़ों में, और इसी तरह से मरने के बाद जन्नत या जहन्नम, दैट्स इट। तो डोंट वरी, आप कभी नहीं खत्म होंगे। अब जिस चीज ने हमेशा रहना है, इमेजिन कीजिए, जिस चीज ने हमेशा रहना है उसकी ज्यादा फिक्र करनी है, या जिस कपड़े ने हमारे जिस्म से कुछ 20-25-30 साल बाद उतर जाना है? सिंपल सी बात है, जिसने रहना है। तो रूह की हिफाजत करना, अपनी हिफाजत करना। तो इसीलिए यहां अल्लाह ताला ने इंसान के मुख्तलिफ मराहल के दौरान एंड पे क्या कह दिया, फिर क्यामत के रोज तुम जरूर निकाले जाओगे। और अगर आपने कभी माँ के पेट में बच्चे के फीटस की तस्वीर देखी हो ना, बिल्कुल अल्लज़ी नहुम फी सलातिम खाशी, उनकी कैफियत है, हाथ बंधे हुए इस तरह घूमा हुआ, गोल एक दायरा सा बना होता है ना, यूं चुकड़ा हुआ, उल्टा सोची अकड़ा हुआ कभी देखे? ये असल में अल्लाह माँ के पेट से सिखा के लाता है कि देखो तुम दुनिया में बंदे बन के रहोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। और पूरी एम्ब्रियोलॉजी पढ़ा दी उस दौर में जबकि किसी को वहां इन चीजों का नहीं पता था, और अल्लाह ने जो बनाया खूब बनाया। हकीकत है अल्लाह सुब्हान तआला हम सब को लेके जाता है। तो वहां पर मैं सोचिए कि जब हम जन्नतुल फिरदौस के फौरन बाद इन आयतों को पढ़ते हैं तो ज़हन में क्या आता है? मुझे ऐसे लगा कि जैसे दुनिया में कामयाबी के नाम पे क्या है कि तीन लोग कामयाब होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाकी सब पास है, ऐसे ही होता है ना। चले जी, इनको डिग्रेड्स मिलेंगे, हैं तो बहुत सारे लेकिन सीट्स लिमिटेड। अल्लाह के पास सीट्स लिमिटेड नहीं है, एवरी वन हु डिजर्व वो विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा होगा, उसको अल्लाह ताला हाई ग्रेड, हाईएस्ट ग्रेड पे एक नहीं जाएगा, हर एक जा सकता है, पहलों में भी जाएंगे, बाद वालों में भी जाएंगे। अब इसके बाद कुछ चीजें तौहीद की निशानियों की सूरत में जिनसे हम दिन रात गुजरते हैं, तो बता दिया कि तुम्हें अगर अल्लाह की बात माननी मुश्किल लगती है तो देखो वो जात कौन है। फरमाया तुम्हारे ऊपर हमने 7 रास्ते बनाए, तख्लीक के काम से हम कुछ नाबलद भी ना थे, यानी हमें तख्लीक करना आता है, हम कोई अनाड़ी लोग थोड़ी हैं। और आसमान से हमने ठीक हिसाब के मुताबिक एक खास मकदार में पानी उतारा और इसको जमीन में ठहरा दिया, हम इसे जिस तरह चाहे गायब कर सकते हैं। फिर इस पानी के जरिए से हमने तुम्हारे लिए खजूर और अंगूर के बाग पैदा किए, तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत से लजीज फल हैं और इनसे तुम रोजी हासिल करते हो, इमेजिन करें। और वो दरख्त भी हमने पैदा किया जो तूरे सीना से निकलता है, तेल भी लिए हुए उगता है और खाने वालों के लिए सालन भी है, कौन सा? ऑलिव ऑयल। आपको यहाँ इनको ऑलिव ऑयल की रेसिपीज में देनी चाहिए चीजें, क्योंकि ऑलिव ऑयल के फायदे इसके साथ होंगे तो पारे के साथ मैच होते हैं कि किस तरह से अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए रखा। आप बताइए मट्टी में कौन सी फैक्ट्री है जो तेल निकालती है? जाएं आप, मैं मट्टी को लेकर दबाएं चबाएं कुछ करें, कहां से निकलता है ऑलिव में, कहां से आया? गुठली खा के देखे, तोड़ के देखे, जिसको लगाते हैं फिर बीज से उगाते हैं, क्या उसमें ऑयल होता है? लेकिन जब उसको निकालते हैं तो उसमें से ऐसी खूबसूरत तेल की धारें। मट्टी से कोई दूध निकाल कर दिखाए, लेकिन उसी मट्टी से खाए हुए चारे को खाकर जो गाय भैंसें वो दूध देती हैं। फरमाया, दर हकीकत तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है, इनके पेटों में जो कुछ है इसमें से एक चीज यानी दूध हम तुम्हें पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए इसमें दूसरे बहुत से भी फायदे हैं। इनको तुम खाते भी हो और इन पर और कश्तियों पर तुम सवार भी किए जाते हो। किस तरह से अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बता दिया कि इंसान तू कितना है, मैं सब कुछ मैंने तेरे लिए बनाया, लेकिन तू इन चीजों को नहीं मानता। अब इसके बाद कौमों के किस्से किस सिनेरियो में सुनेंगे? पहली आयतों के सिनेरियो में कि अल्लाह ने तो ये सब कुछ दिया, लेकिन नाफरमान लोग जो हैं वो मुफले होने की बजाय वो नाफरमानियां करके अल्लाह की नाराजगी का शिकार होते हैं। सबसे पहले कौमे नूह, और इसको अपने इस रंग से सुनना है कि अब आप दौरे कुरान के नाते से अपने आप को तब्दील करने लगी, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर कुछ चेंजेस आने लगी। अब जो इसका रिएक्शन शो होगा आपके घर में और आपकी दोस्तों में, उसको जरा इस वाक्य से देखिएगा। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, उन्होंने कहा मेरी कौम के लोगों अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई और माबूद नहीं, क्या तुम डरते नहीं हो? इसको हाईलाइट करें। अफला तत्तकून, हकीकत यह कि तकवा ही है जो इंसान से तब्दीलियां लेता है। तकवा इंसान को अल्लाह का खौफ भी सिखाता है और अल्लाह से मोहब्बत करना भी सिखाता है। बिल्कुल वही मिसाल ज़हन में रखिए कि तकवा इंसान से नेकियां कराएगा और वो गुनाहों में फर्क पैदा करता है, लाइफस्टाइल चेंज होता है। थोड़े पैसे होते हैं, शुरू की जॉब के डेज हैं, तो घर में बेसिक चीजें आती हैं। अभी कैरियर बिल्ट हुआ, अभी नई नई शादी हुई है, चलो ये कर लेते हैं, अभी कौन जानता है। फिर ऐसा ऐसा प्रैक्टिस चली, मेडिकल लाइन पूरी हो गई, आपको अल्लाह ने बहुत अच्छी जॉब दिलाई, फिर घर में कौन चीज आते हैं, सोफे आते हैं, फिर घर बड़ा होता है। तो जितना दुनिया का माल बढ़ता है ना, उतनी हमारी जिंदगी में सहूलतें आती हैं, फिर आम चीजें अच्छी नहीं लगती। इसी तरह से तकवा जितना आता है उतनी नेकियां फिर बड़ी होने लगती हैं। ये तो सब करते हैं, अल्लाह मुझे कोई खास नेकी करनी है, अल्लाह कोई ऐसा बात सुना, कोई ऐसा तरीका, फिर नए आइडियाज आते हैं, फिर आपका दिमाग चलता है, फिर आप कहते हैं अल्लाह ये तो सब करते, छोड़ो ये क्या करना, तो रिपीट किया तो क्या हुआ। इसी का एक और स्ट्रक्चर बना के कहते अल्लाह मुझे कोई समथिंग डिफरेंट। आप देखिए नेकियां करने के भी दो अंदाज है ना, एक या रटी रटाई नेकियां, जो एक मस्जिद वाले कर रहे हैं सब वही कर रहे हैं, जो एक इदारा कर रहे हैं आप भी सब वही शुरू करते हैं, जो एक इंसान कर रहा है आप भी वही कॉपी करें, ये तकवा नहीं है। तकवा के मैं वो करूं जो इस वक्त जरूरत है, जो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, चले मैं वो कर दूं, वो चीज उनसे सुन लें, ये चीज हमसे सुन लें, ये हमने कर दिया, अब एक और चीज करते हैं। फिर जो आइडियाज आते हैं ये असल में तकवा की बेस्ड है। और मैं अक्सर सोचती हूँ कि तकवा के सेल्फ मोटिवेटेड होना, अगर आपके दिल में नेकियों के इरादे और ख्यालात नहीं आ रहे तो ये तकवा की कमी है। तकवे के साथ वो आइडियाज है, जैसे कुछ लोगों का दिमाग चलता है तो घर बैठे ही कपड़ों के डिजाइन आने लगते हैं, स्टाइल जेन में आते हैं, कुछ का खानों पकानों में बड़ा दिल लगता है तो उनको रेसिपी से बैठे बैठे कुछ ना से कुछ बना के भी दिखा देंगे, जी ये बना वो बना। लेकिन तकवा के साथ इंसान को इतनी नई नेकियां याद नहीं आती कि चलो इन्वेंट कर लो, लेकिन उन्हीं नेकियों को एक नए रंग से खूबसूरत तरीके से करता है। अब सवाल पैदा होता है कि फिर तकवा हम भी कोशिश करते हैं फिर क्यों नहीं आता? तो बाज़वा छलनी होती है, जैसे छलनी में कुछ डाले ना तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता जाता है। हम नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज आ जाए कि जिसके साथ हम अपने आप को रिलेट करने की कोशिशों में पता नहीं अल्लाह के हुक्म से दूर हो जाए, तो फिर वो तकवा चला भी जाता है। तो बेसिक चीज किसी को भी मोटिवेट करना है अल्लाह का डर। इसकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया वो कहने लगे ये शख्स कुछ भी नहीं है मगर एक बशर तुम्ही जैसा, यानी उसको लट डाउन करने का की कोशिश की कि इसकी इंपॉर्टेंस ना लो इतनी, इसकी गरज यह कि तुम पर बर्तरी हासिल करे। देखिए इल्जाम, पहले क्या कहा उसकी हैसियत कम की, अब इल्जाम भी लगा दिया, ये इसलिए दीन का काम करते हैं कि ये बड़े बने, लोग इनको सलामे करें, इनको शोहरत का शौक है। और अगर अल्लाह को भेजना होता तो फरिश्ते को भेजता, होते होते एतराज अल्लाह पे पहुंच गया। ये बात तो हमने कभी अपने बाप दादाओं के वक्त में सुनी ही नहीं कि बशर रसूल बन कर आए, और नहीं बस कुछ नहीं इस आदमी को जरा जुनून लाहक हो गया। इसको हाईलाइट करें, इन हुआ इल्ला रजुल नहीं भी ही जिन्ना, ये ताना तो मिलता ही है, ये जुनूनी है, फनेटिक हाइपर हो गए, इनको क्या हो गया समझ नहीं आती, घर में इनका दिल नहीं लगता, बच्चे रो रहे हैं, घर वालों की फिक्र नहीं, बच्चे लोनली फील कर रहे हैं, वो ऐसे परेशान है ये। और याद रखिए कि जब बंदे को एक धुन सवार होती है, एक पैशन बन जाता है ना, तो वाकई वो क्रेजी हो जाता है, इसमें कोई शक भी नहीं है। खुद को पता लगे ना लगे दूसरों को पता चलता है इनको हुआ क्या, इनकी तो दुनिया बदल गई, इनको चैन ही नहीं, इधर रात दिन सुबह शाम उसको राजी उसको नाराजी उसको नाराज करते हैं। जैसे हम कभी आईने में खुद को नहीं देखते ना, इस वक्त भी आप मुझे देख रहे हो मैं आपको देख रही हूँ, इसी तरह बाज़ औक़ात हम जो हरकतें कर रहे होते हैं, हरकतों से मतलब बुरी नहीं, लेकिन जो हमारी मूवमेंट्स होती हैं, जो हमारी प्रायोरिटीज होती हैं ना, उसको दूसरे हमसे ज्यादा फील कर रहे होते हैं। कभी आप जोश में साथियों को बातें करता देखा करें, ये कर लें, वो कर लें, ये करें, तो मैं उनका मुंह देख रही होती हूँ, ये होगा कैसे, बस हो जाएगा, कोशिश करते इस रमजान में ये हो जाएगा। तो याद रखिए, अगर लोग हमें अभी तक जुनूनी नहीं समझे तो फिर पैशन नहीं बना, फिर अभी हमारा कुरान बस इसी तरह अंदर ही अंदर है। और लोग कहते क्या हो गया, ही इज नॉट आउट ऑफ माइंड, इज ही ओके, क्या हो गया, आर यू गोइंग क्रेजी, क्या, सबर सबर। फिर लोग आपको मशवरे देंगे, अच्छा टेक इट इजी, रिलैक्स्ड, दीन भी रखो, दुनिया भी रखो। तो आप हजरत नूह को याद कीजिएगा, और आगे आप पढ़ेंगे सूरह नूह में कि इन्नी दाउतुहुम लैलन व नहारा, अल्लाह मैंने इनको रात को भी पुकारा, दिन को भी पुकारा, खामोशी से भी पुकारा, शोर करके भी, ऊंची भी पुकारा। तो इन चीजों को लोग फिर क्रेजीनेस कहते हैं, उनको ये जुनून लगता है। का कोई बात नहीं, काला रब बिनसुरनी बिमा कज़्ज़बूनी, कुछ मुद्दत और देख लो, शायद ही फाका हो जाए। बहुत सारे लोग आपके लिए भी इस बात के मुंतजर हैं, ये जोश 4 दिन का ठंडा हो जाएगा। अक्सर लोगों से आप ये सुनेंगे कि 4 दिन का भूत सवार हुए, सब उतर जाएगा, ये कुरान कुरान, ये उम्मत वसत, और ये पर्दा पर्दा, ये हिजाब, ये हर वक्त की नेकियां देखना लग बता जाएगा। तो वो उनके लिए भी मुंतजर थे, आज आपके लिए भी है। लेकिन हकीकत है कि जिसने अनदेखी जन्नत देखी, और उसको तो फिर उस जन्नत को देखने का शौक आएगा ना। और लोग क्या सोचते हैं, अनदेखे रब से ये डर रहे हैं और हमसे नहीं डर रहे, तो इनके सामने इतने बड़े रब बन के खड़े। जिसको जन्नत को देखा नहीं उसको इतना शौक है और इतनी हसीन जन दुनिया, इनके सामने इसकी ये केयर ही नहीं करते, तो वाकई बंदा क्रेजी हो जाता है। और ऐसा क्रेजीनेस मुबारक हो आपको। तो लोगों की उम्मीदों पे और टल जाती है उस वक्त जब बाद में भी फाका नहीं होता। नूह ने कहा, परवरदिगार इन लोगों ने जो मेरी तकजीब की, इस पर अब तू ही मेरी नुसरत फरमा, हमने इस पर वही की कि हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक कश्ती तैयार कर, जब हमारा हुक्म आ जाए और वो तनूर उबल पड़े तो हर किस्म के जानवरों में से एक जोड़ा ले ले और इसमें सवार हो जा, और अपने अहलो याल को भी साथ साथ ले ले, सिवाय इनके जिनके खिलाफ पहले से फैसला हो चुका। बला तो खातिबनी फिल लजीना सलमु इन्ना मुग़रफून, और जालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना, ये तो अब गर्क होने ही वाले हैं। फिर जब तू अपने साथियों समेत कश्ती में सवार हो जाए तो कह के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज़ाना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, फरमाया कि कह दीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात का जिसने हमें ज़ालिम लोगों से निजात दी, और कह के परवरदिगार मुझको बरकत वाली जगह पर उतार और तू बेहतरीन जगह बताने वाला। हाईलाइट कर लीजिए, किसी भी जगह अगर कश्ती जो है वो रुकती है या उसके अंदर कोई चीज होती है तो उसके अंदर यही दुआ है कि आप अल्लाह तआला से ये दुआ करते हैं कि मेरे मालिक, हम अपने आप को तरह से तेरे सामने पेश करते हैं कि हम जहां भी रहें, जहां भी रुकें, उसको तू हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बना दे। तो ये दुआ मांगकर अल्लाह ताला ने हजरत नूह की कश्ती को पुरसकून जगह पे खड़ा कर दिया। क्या पता चला कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो पानी में डूबने वाली नहीं थी, अल्लाह के हुक्म से चल रही थी, उन्होंने उसके लिए अल्लाह सुबहाना ताला के साथ ये बात की कि अल्लाह ताला इसको बरकत के साथ उतारना। आप और मैं जब भी कभी भी किसी जगह जाते हैं तो उस वक्त हमें इस चीज की बहुत जरूरत होती है कि जब भी हम किसी जगह जाते हैं हमें जरूरत होती है कि लोग हमसे फायदा उठाएं, हमें को फितना ना पहुंचे। तो आप इसको हाईलाइट कर लें, कभी भी किसी जगह भी उतरना चाहें, कहीं स्टॉप ओवर करें तो इसको दुआ कीजिए, और अल्लाह ताला फिर इन दुआओं की बरकत से वाकई आपको वहां बरकतें देगा। फरमाइन, इस किस्से में बड़ी निशानियां हैं और आजमाइश तो हम करते ही रहते हैं। क्या पता चला कि दुआएं करने के बावजूद भी आजमाइशें आ जाती हैं। ये अल्लाह के हुक्म से कि जब भी इंसान अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह ताला उसके लिए उन चीजों को तभी आसान करता है जब अल्लाह का हुक्म होता है। अब दूसरी कौम का जिक्र। इनके बाद हमने एक दूसरे दौर की कौम उठाई, फिर इनमें से खुद इन्हीं की कौम को एक रसूल भेजा जिसने इनको दावत दी। दावत के बुनियादी नुक्ते देखिएगा कि जब भी कोई एक कौम जाती है उसकी जगह दूसरी कौम आने लगती है तो फिर उसका क्या नतीजा होता है, कुछ अरसे के बाद उसी में फिर बिगाड़ आ जाता है। जैसे वो कहना चाहिए कि शम्मा से दूर होते हैं ना तो अंधेरा होने लगता है। एक कौम के बचे हुए लोग जिनको अल्लाह ने इतनी बड़े तूफान से बचा लिया, अगले दौर में उन्हीं के अंदर फिर गलत किस्म के काम करने वाले आ गए। लेकिन हर दौर के नबी का एक ही पैगाम था कि अल्लाह की बंदगी करो। आज आपने इस नुक्ते से आगे हटना ही नहीं है, अपने बच्चों को बात समझाते हुए जब तक वो इस बात को समझ ना जाए, अने बुदुल्ला बेटा अल्लाह के बंदे बनो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद ही नहीं है, लिहाजा तो क्या तुम नहीं डरते। उनकी कौम के जिन सरदारों ने मानने से इनकार किया और आखिरत की पेशी को छुटलाया, जिनको हमने दुनिया की जिंदगी में आसूदा कर रखा था, वो कहने लगे ये शख्स कुछ नहीं मगर एक बशर तुम ही जैसा। जो कुछ तुम खाते हो वो ये खाता है, जो कुछ तुम पीते हो वो ही ये पीता है। अब अगर तुम अपने ही जैसे एक बशर की इताअत कबूल कर लोगे तो तुम घाटे ही में रहोगे। आज भी यही थॉट है। दीनदारों को फरिश्ता बनाकर दूर मस्जिदों में बिठा दो, मिम्बरों में बैठे रहे, हुजरों में बैठे रहे और हमें ना आके डिस्टर्ब करें। इनको ना हमारी दावतों में बुलाओ, ना इनको हमारी पार्टीज में बुलाओ, ना शादियों में, क्योंकि एक दफा उनकी बात है तो लोग, अरे वो तो फरिश्ते हैं, अरे उनकी क्या बात है, हम तो गुनाहगार लोग हैं। याद रखिए, ये भी एक धोखा होता है। लोग चाहते हैं कि दीन वाले जो हैं वो दुनियावी मैटर्स में बिल्कुल हमें टच ना करें, तो वो कहते थे कि इनको पीछे कर दो। और ये तुम्हें इतला देता है कि जब तुम मरकर मट्टी हो जाओगे और हड्डियों का बिंजर बनकर रह जाओगे, उस वक्त तुम कब्रों से निकाले जाओगे। बईद, बिल्कुल बईद है ये वादा जो तुमसे किया जा रहा है। तो जिंदगी कुछ नहीं, बस यही दुनिया की जिंदगी है। इन हिया इल्ला हयातुना दुनिया नमूत व नहया वमा नहनु बिमबऊसीन। तो हाईलाइट कीजिएगा, जिंदगी कुछ नहीं मगर बस यही दुनिया की जिंदगी, यही हमको मरना और जीना है, और हम हरगिज़ यहां से उठाए जाने वाले नहीं है। अल्लाह अकबर, सोचिए कैसी गलतफहमी होती है। आज भी वल्लाही लोगों के जीने के रंग ढंग देखें तो यही लगता है, कहते दुनिया बस दुनिया, आखिरत देखेंगे जब होगी। और बस तो इतनी जुरत करते हैं, कहते दुनिया नकद है, आखिरत उधार है। उधार किसने आज तक चुकाया है? ना उस बिला सुम्मन ना उस बिला, अकीदे आखिरत का इनकार है कि अल्लाह ने कहा हिसाब चुकाना है, उधार तो कोई देता ही नहीं। मतलब यह है कि बस जियो, मौज करो, मस्ती करो, ईट ड्रिंक बी मैरी, लिव वंस यू लिव वंस यू यंग वंस। तो अल्लाह तआला कहते हैं कैसी बातें। इस तरह से आप देखिए कि तुम दीन के नाम पर लोगों को लट डाउन करते हो और फिर अपने जीने के लिए मजे करते हो, परेशान करते हो अपने आप को, दूसरों को। तो क्या पता चला इन सारी चीजों को सुनने के बाद जो पीछे से चल रही हैं, कि जब भी दीन का आपके सामने कोई मैसेज दे तो आप दीन पे नजर रखें। दीन क्या कहता है, उसकी असल क्या है? क्या खाने से रोकता है, पीने से रोकता है? नहीं। क्या दीन तुम्हें इस दुनिया के अंदर कामयाब होने से रोकता है? सभी नहीं है। बल्कि दीन क्या सिखाता है, इस दुनिया में रहते रहते उस दुनिया की तैयारी करो, जीने वालों को जाने की तैयारी करनी है, ये मैसेज है। बाकी दीन की बात करने वाले, कहने वाले, ना वो फरिश्ते होते हैं, ना वो सिन प्रूफ होते हैं, कुछ भी नहीं होता। उनसे बड़ी बड़ी उम्मीदें लगाने वाले भटक जाते हैं। आज भी शख्सियत परस्ती के नाम पर, जिसको पर्सनैलिटी वर्शिप कह लीजिए, बहुत सारे लोग भटक गए। उन्होंने उनको बड़ा बनाया। अब जब इंसानी दाते से उनकी कोई चीज देखी, इंसान जो हुए, अगर देखे फरिश्ते होते तो फिर तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब उनके माँ बाप भी हैं, उनके बहन भाई भी हैं, उनको थकन भी है, उनको नींद भी है, उनके स्केजुअल भी है, उनकी कई चीजें। अब लोग उसको ना समझ सके तो बस पीछे हो गए। हम ऐसे दीन वालों से बचे जो होटल में खाना खाते हैं, हम ऐसे दीनदारों से बचे जो गाड़ियां चलाते हैं, वो हम ऐसे दीनदारों से बचे कि जिनके घर हैं। तो याद रखिए कि दिखावे का तकवा नहीं है, वो लोगों के लिए होता है। अल्लाह के लिए तकवा दिल में होता है। लोगों के लिए क्या, हाल से बेहाल नजर आना, दुखी नजर आना, बड़े गरीब दिखना, बड़े मिस्कीन दिखना। तो जब अल्लाह की नेमतों को पाकर एक बंदा सिर्फ लोगों के डर से उसको इस्तेमाल करना छोड़ दे, तो इससे ज्यादा रियाकारी और क्या होगी। अल्लाह ताला कहते हैं ऐसी ऐसी बातें सुनाकर भी खामोश नहीं हुए, बल्कि नबियों पर एक और इल्जाम क्या लगाया, इन हुवा इल्ला रजुलुन इफ्तरा अलल्लाहि कसीबा। ये शख्स अल्लाह के नाम पर महज झूठ घड़ रहा है और हम कभी इसकी मानने वाले नहीं। आज के दौर में लोग इस जुमले को कैसे बोलते हैं, ये दीन मौलवियों ने सख्त किया हुआ है, अल्लाह ऐसा नहीं है। सुनिए कभी अपनी ये बात, ये मौलवियों ने दीन सख्त किया हुआ है, यही जुमला वो कहते हैं, ये अल्लाह ने कोई नहीं कहा, ये इनकी अपनी बातें हैं। तो रसूल ने कहा, परवरदिगार इन लोगों ने जो कि मेरी तकजीब की, इस पर तू ही मेरी मदद फरमा। जब आप मेरे साथ हुआ, करीब है वो वक्त जब कि अपने किए पर पछताएंगे। आखिरकार ठीक ठीक हक के मुताबिक एक हंगामे अजीम ने इनको आ लिया और हमने इनको कचरा बनाकर फेंक दिया। दूर हो जालिम कौम। अल्लाह अकबर, खुद को कितने इंपॉर्टेंट समझते थे, अल्लाह ने उनको ट्रैश कैन में फेंक दिया, कचरा बना दिया। और यहां देखिए, किसी कौम का नाम नहीं है ताकि हर कौम इसमें अपना नाम लिख ले। जिसने भी अल्लाह के हुक्म को छोड़कर दूसरी तरफ रुख किया, उसके साथ ऐसे ही होगा। अल्लाह ताला आज उम्मत मुस्लिमा को समझते थे। आज मैं और आप अपने आप को क्या सोचते हैं? फौरन ये दुआएं करें, आज भी कोई आप पर शक करे, आपको दीन के मामले में कुछ गलत सोचे, पढ़ लीजिए रब इंसुरनी बिमा कज़्ज़बून। अल्लाह तुझे पता है मैं सच्ची हूँ, ये मुझे गलत समझ रहे हैं। अल्लाह तुझे पता है मेरे पास हक है लेकिन ये मुझे बातिल समझ रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आएगी, आएगा और बेहतरीन तरीके से ये काम होंगे।